जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Gokula Nanda, Radha Gokula Nanda Radhe. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Baladeva, Jaya Subhadra. जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल विष्णुपाद परमहंस परित्राजकाचार्य स्तोत्र सतहस्तिमान गृह सभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री झूलन यात्रा महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंद समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमो ओम विष्णुपादाय न प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरून् दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज से वृंदावन का प्रसिद्ध महोत्सव झूलन यात्रा
प्रारंभ हो रहा है। इस झूलन यात्रा के महोत्सव में श्री श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्तियां एक झूले पर बिठाए जाते हैं और झूले के ऊपर फिर भक्त आकर झूला झुलाते हैं, श्री श्री राधा कृष्ण को दिव्य आनंद प्रदान करते हैं और इन सुंदर वृंदावन की लीलाओं के ऊपर ध्यान करते हैं। भक्तों का आनंद इन्हीं चीजों में है, अन्य चीजों में भक्त आनंद नहीं लेते हैं। वास्तव में भगवान की लीला करने का यही उद्देश्य है कि आनंद की वृद्धि हो। यहाँ भी हम देखते हैं भौतिक जगत में लोग क्रीड़ा करते हैं, खेल खेलते हैं, आपस में उपहास आदि करते हैं ताकि जीवन में कुछ आनंद प्राप्त हो। आनंद केवल कार्यों से प्राप्त हो सकता है। जब हम कोई कार्य करते हैं अन्यों के साथ तब कोई आनंद प्राप्त होता है। कोई अन्य वस्तु चाहिए, कोई अन्य व्यक्ति चाहिए, फिर थोड़ा कुछ आनंद संभव है। अकेले में आनंद कैसे पा सकता है व्यक्ति, भले वह भौतिक सुख क्यों न हो, उसके लिए भी हमें किसी वस्तु या व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। अकेले में कोई भी रहना नहीं चाहता। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी अकेले नहीं रहना चाहते, वो सदैव अपने भक्तों के साथ में रहते हैं और भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। भगवान के जो कार्य होते हैं उनको लीला कहते हैं, क्योंकि ऐसे कार्य भौतिक सृष्टि के कर्म के सिद्धांत या कर्म के कानून के अंतर्गत नहीं आते। ये कार्य भगवान स्वेच्छा से करते हैं, बाध्य होकर नहीं करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के जो दिव्य कार्य होते हैं उनसे आनंद और प्रेम की वृद्धि होती है, परंतु जो संसार के कार्य होते हैं उनसे केवल भव बंधन हो जाता है और बंधन के कारण दुख उत्पन्न हो जाता है। तो साधारण कार्य और लीला में ये अंतर है। भगवान उन्हीं लीलाओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रकट होते हैं भौतिक सृष्टि पर, भौतिक सृष्टि में, और अपने धाम को भी यहाँ प्रकट कराते हैं, जिसमें कि स्थित होकर वो अपने पार्षदों के संग ऐसे सुंदर लीलाएं करते हैं हम सब का मन आकर्षित करने के लिए। भगवान के जितने भी पार्षद हैं जो उनकी सेवा करते हैं, वो भी विशेष करके वृंदावन में एक प्रकार के भ्रम में होते हैं। कई सोचते हैं कि श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं, थोड़े सोचते हैं कि श्री कृष्ण मेरा बच्चा है, थोड़े सोचते हैं कि श्री कृष्ण मेरे प्रेमी हैं, मेरे पति हैं। तो ये सारे जो भावनाएं हैं ये भगवान कृष्ण के योग माया शक्ति के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं और ऐसे भ्रम में आकर भक्त भूल जाता है कि श्री कृष्ण भगवान है और वो भगवान को अपना पुत्र, मित्र, प्रेमी आदि मानकर ही कार्य करता है। योग माया के प्रभाव में आकर प्रेम की वृद्धि होती है, प्रेम बढ़ते जाता है, आनंद बढ़ते जाता है और जो भक्त है वो भगवान के और भी निकट आ जाता है। उसकी प्रेम की तीव्रता वो बढ़ते रहती है। दूसरी ओर ये भौतिक सृष्टि में हम देखते हैं कि लोग भगवान की सेवा करने के इच्छुक नहीं होते हैं, वो केवल अपने इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करते हैं और इसी को सच्चा सुख या आनंद समझते हैं। और जो भौतिक सृष्टि के अंदर इस प्रकार से कार्य करते हैं, हमें ये जानना चाहिए कि वो भगवान श्री कृष्ण के महामाया शक्ति के अंतर्गत ऐसा कर रहे हैं। वो भी भ्रम में है। उनका भ्रम क्या है? उनका भ्रम ये है कि मैं शरीर हूं, मैं प्रभु हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं मालिक हूं, भगवान नहीं है, और है भी तो उनका काम है कि मेरी सारी कामनाओं को पूर्ण करना, और मैं उनसे बहुत सारी चीजें मांगूंगा, उनको मेरी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहिए ताकि मैं और भी इंद्रिय तृप्ति और भोग कर सकूं। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति भौतिक संसार में महामाया के जाल में फंस के कार्य करते हैं, वो भगवान से और भी दूर होते जाते हैं। सच्चे प्रेम की खोज में वो उस दुनिया के तथाकथित प्रेम के पीछे भागते हैं, परंतु केवल हताशा हो जाती है, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, क्योंकि सच्चा प्रेम इस दुनिया में नहीं पाया जा सकता है। महामाया के अंतर्गत प्रेम नाम की चीज नहीं है, उसे काम कहते हैं। भले काम के सूक्ष्म रूप हो या स्थूल रूप हो, परंतु ये दुनिया की जो आसक्ति है इसे काम कहते हैं, और इस काम के से प्रेरित होकर सभी लोग काम करते हैं। तो जो भी कार्य है वो सब काम से प्रेरित होते हैं, परंतु योग माया के अंतर्गत जो कार्य होते हैं वो प्रेम से प्रेरित होते हैं। तो दोनों में अंतर ये है। आध्यात्मिक जगत में भी कार्य होते हैं, जो भक्त होते हैं वो भगवान की सेवा करने के लिए प्रेरित होते हैं, परंतु उनकी प्रेरणा स्रोत है प्रेम, कृष्ण प्रेम। यहाँ जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए प्रेरणा का कारण क्या है? इंद्रिय तृप्ति, भोग की भावना, मिथ्या। इसलिए आध्यात्मिक जगत में योग माया के प्रभाव में भक्तों का प्रेम भगवान के प्रति बढ़ते रहता है, आनंद बढ़ते रहता है, परंतु भौतिक जगत में जितना अधिक लोग इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करते हैं वो भगवान से और दूर होते जाते हैं, और उनका दुख, उनका कष्ट बढ़ जाता है। वृंदावन के निवासी जब भगवान की सेवा करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, तो ये योग माया के प्रभाव के सबसे अच्छे उदाहरण है। जबकि वो भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं और कृष्ण कौन है। योग माया के प्रभाव में वो सोचते हैं कि कृष्ण का प्रेम करना, कृष्ण को संतुष्ट करना, कृष्ण के साथ रमण करना, बस यही हमारी एकमात्र इच्छा है और कार्य है। भौतिक जगत में ऐसी भावना नहीं होती। झूठे मूठे कृष्ण अपने आप को व्यक्ति समझ लेता है। दुर्योधन, शाल्व आदि जो असुर थे, वो प्रभुपाद जी कहते हैं महामाया के प्रभाव में आकर भगवान से दूर होते गए। यहां तक कि जब उन्होंने भगवान को गरुड़ के ऊपर सवार होकर देखा फिर भी विश्वास नहीं हुआ, भगवान का विराट रूप देखा फिर भी विश्वास नहीं हुआ, फिर भी वो इंद्र तृप्ति के कार्य में लगे रहे, भगवान के शरण में नहीं आए। तो जब भगवान श्री कृष्ण लीला करते हैं वृंदावन में, तो हमें उनको साधारण कार्य नहीं समझने चाहिए। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म को दिव्य जान लेता है तत्वतः, उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, बल्कि वो मेरे धाम को प्राप्त होता है, मेरे लीला में वो प्रवेश कर लेता है। तो इसी चीज को बतलाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, हम सबको उनकी लीलाओं के प्रति और उनके प्रति और उनके वृंदावन धाम के प्रति आकर्षित करने के लिए वो प्रकट होते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में अपने सुंदर शब्दों में वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण यहाँ भौतिक जगत में क्यों प्रकट होते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के चौथे अध्याय से भगवान के प्रकट होने के आंतरिक कार्य, गुह्य कार्य। और यह है श्लोक 7 से आगे।
पूर्वे जन पृथ्वी भार हरि बारे कृष्ण अवतीर्ण होइल शास्त्रेते प्रचारे।
पूर्व जनो पृथ्वी भार हरि बारे, पूर्वे मतलब पहले प्राचीन काल में भगवान अवतीर्ण हुए थे पृथ्वी या भौतिक सृष्टि के भार का हरण करने के लिए। भार हरि बारे कृष्ण अवतीर्ण होइल शास्त्रेते प्रचारे, तो ऐसे शास्त्रों में कहा गया है कि श्री कृष्ण के अवतीर्ण होने का ये मुख्य कारण था पृथ्वी का भार हरण करने के लिए।
स्वयं भगवानेर कर्म नहि भार हरण स्थिति कर्ता विष्णु करेण जगत पालन।
स्वयं भगवानेर कर्म नहि भार हरण, परंतु अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने ही अभी कहे हुए वचनों को उल्टा कह रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं कि स्वयं भगवान कृष्ण जो हैं उनका कर्म नहीं है भार हरण करना। अभी कह चुके हैं कि वो भार हरण करने के लिए अवतीर्ण होते हैं, और बाद वाले श्लोक में ही तुरंत कहते हैं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ये काम नहीं है पृथ्वी के भार को कम करना। तो पृथ्वी के भार को कोई तो कम कर रहा है, तो कौन कम कर रहा है? स्थिति कर्ता विष्णु कौरेन जगत पालन, तो ये कार्य है जो पृथ्वी के भार को कम करने का है वो भगवान विष्णु करते हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण नहीं करते हैं।
किंतु कृष्ण जय होए अवतार काल भार हरण काल ताते होइलो मिशाल।
किंतु कृष्ण जय होय अवतार काल, जो कृष्ण के अवतीर्ण होने का जो समय है इस भौतिक सृष्टि में, भार हरण काल ताते होइलो मिशाल, बिल्कुल दोनों का मिलन हो गया। श्री कृष्ण के इस भौतिक सृष्टि में अवतीर्ण होने का समय और पृथ्वी के ऊपर भार हरण करने का समय, दोनों एक ही समय में आए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि वो बार बार यहाँ पर पृथ्वी के भार का को कम करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए आते हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतान धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। तो युग युग में संभवामी, भगवान कहते हैं मैं प्रकट होता हूँ। तो हर युग में जो चार युग हैं, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सत्य, इन सब में भगवान प्रकट होते हैं भिन्न भिन्न अवतारों में, और ऐसे सारे कार्य करते हैं जैसे कि पृथ्वी के भार का हरण करना। परंतु स्वयं भगवान जो श्री कृष्ण है वो केवल ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के बहुत सारे अवतार हैं, अनगिनत अवतार हैं, और वो समय समय पर आते रहते हैं, और इस प्रकार से आते हैं कि हर एक युग में कम से कम एक अवतार तो होते ही होते हैं, बल्कि एक से अधिक होते हैं, परंतु कम से कम एक अवतार तो होते ही हैं भगवान के कोई न कोई। और श्री कृष्ण इन समस्त अवतारों के उद्गम हैं, स्रोत हैं। एते चांस कलह पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। हर युग में श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भगवान प्रकट होते हैं, अवतीर्ण होते हैं, इसलिए उनको अवतार कहा जाता है। परंतु इन सब के जो उद्गम हैं, जो स्वयं भगवान हैं, वो श्री कृष्ण हैं। जो अन्य हैं वो अवतार हैं, और जो श्री कृष्ण हैं वो अवतारी हैं। इन समस्त अवतारों के उद्गम हैं, इनके स्रोत हैं। परंतु क्योंकि वो अवतीर्ण होते हैं, कभी कभी उनको भी अवतार कहते हैं, परंतु वो अन्य अवतारों की तरह नहीं है, वो अवतारों के में से सर्वश्रेष्ठ हैं, उनके उद्गम हैं, वो अवतारी कृष्ण हैं। तो अवतारी कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना लंबा होता है? ये चार युग जो होते हैं, कली, द्वापर, त्रेता और सत्य, ये जब हजार बार घूमते हैं तब जाकर ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं, या ब्रह्मा जी का एक दिवस। तो ऐसे एक दिन में एक बार ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, और ऐसे एक दिन में 14 मन्वंतर आते हैं, और भिन्न भिन्न अवतार हर एक मनु के समय में प्रकट होते हैं। परंतु श्री कृष्ण केवल एक बार आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, और वो इनको 7वें मन्वंतर में आते हैं, और 7वें मन्वंतर के 28वें चतुर्युग में आते हैं। तो ऐसा ज्ञान जो है, ऐसी जानकारी शास्त्रों में दी हुई है, चैतन्य महाप्रभु ऐसे बतलाते हैं। तो यहाँ पर कविराज गोस्वामी कहते हैं कि पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए भगवान के अवतार हर युग में आते हैं। तो इस बार जब द्वापर के अंत में पृथ्वी के भार के हरण का समय हुआ, तो वो समय भगवान श्री कृष्ण, अवतारी कृष्ण, उनके प्रकट होने का समय भी हो गया, इसलिए भगवान श्री कृष्ण वहां पर प्रकट हो गए। ये कब की बात हो रही है? ये द्वापर के अंत की बात हो रही है, करीब करीब 5000 वर्ष पूर्व। पूर्ण भगवान अवतार जय काले, आर सब अवतार ताते आशी मिले। पूर्ण भगवान अवतार जय काले, जब पूर्ण भगवान अवतारी श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं या हुए थे द्वापर के अंत में, तो क्या हुआ? आर सब अवतार ताते आशे मिले। अन्य जितने भी अवतार हैं, और कितने अवतार हैं भगवान के? असंख्य हैं। ये समस्त असंख्य अवतार भगवान के, वो सब आकर श्री कृष्ण में मिले। अर्थात जब श्री कृष्ण प्रकट हुए तो उनके भीतर अन्य जितने भी अवतार हैं वो सब प्रकट हुए। नारायण चतुर्व्यूह मत्स्यादि अवतार, युग मन्वंतर अवतार जातो आछे आर। सब आशी कृष्ण अंगे होय अवतीर्ण, आछे अवतारे कृष्ण भगवान पूर्ण। तो जितने भी अन्य भगवान के रूप हैं, नारायण, चतुर्व्यूह, मत्स्य आदि अवतार, युग मन्वंतर अवतार जातो आछे आर, तो मन्वंतर अवतार भी जितने हैं, सबे आशी कृष्ण अंगे होय अवतीर्ण। अवतीर्ण होकर वो कृष्ण के संग, कृष्ण के अंग में ही रहे। जब कृष्ण अवतीर्ण होते हैं तो ये सारे अवतार उनके दिव्य शरीर के भीतर रहते हैं। ऐसे अवतार कृष्ण भगवान पूर्ण। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, अवतारी श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। ऐसे आपने सुना होगा कि जब श्री कृष्ण प्रकट होते हैं इस भौतिक सृष्टि में, तो उनके जितने भी पार्षद हैं, उनके भक्त हैं, वो प्रकट होते हैं। तो वो तो प्रकट होते ही हैं, साथ साथ श्री कृष्ण, कविराज गोस्वामी यहाँ पर कह रहे हैं, भक्तों की बात तो दूर है, जितने भी अवतार हैं वो समस्त अवतार श्री कृष्ण में समा जाते हैं वो प्रकट हो जाते हैं कृष्ण के साथ। तो जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो इस प्रकार से प्रकट होते हैं। देखिए कितनी अद्भुत और सुंदर बात है। अतएव विष्णु तखन कृष्णर शरीरे विष्णु द्वारे करे कृष्ण असुर संहारे। अतएव विष्णु तखन कृष्णर शरीरे, उस समय विष्णु कृष्ण के शरीर में जो है विष्णु द्वारे करे कृष्ण असुर संहारे। तो कृष्ण के शरीर में रहकर विष्णु असुरों का संहार करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण विष्णु के द्वारा असुरों का वध करते हैं। ये ऐसा क्या बता रहे हैं कृष्णदास कविराज? पहले वो चर्चा कर चुके हैं कि कृष्ण नहीं करते हैं, केवल विष्णु असुरों का संहार करते हैं। तो ये मन में प्रश्न हो सकता है कि अरे कृष्ण ने तो कई असुरों का वध किया, बकासुर, अघासुर, पूतना, कितने असुरों का वध भगवान कृष्ण ने वृंदावन में किया। तो यदि कविराज गोस्वामी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अवतार लेकर पृथ्वी का भार हर नहीं लिया और विष्णु ने लिया, तो फिर वृंदावन में क्या हुआ? तो इसका उत्तर यहाँ पर है। उत्तर ये है कि श्री कृष्ण असुरों का वध करते हैं, परंतु विष्णु के माध्यम से। उनके भीतर जो विष्णु हैं, विष्णु उनकी हत्या करते हैं। भगवान श्री कृष्ण केवल वृंदावन के भाव में आनंद लेते रहते हैं। उदाहरणार्थ जब श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया, तो पूतना का वध करने के लिए भीषण शक्ति की आवश्यकता थी, क्योंकि पूतना कोई साधारण स्त्री नहीं थी, एक राक्षसी थी। और ऐसी राक्षसी थी जो कि समस्त योग सिद्धियों से युक्त थी, बहुत शक्तिशाली थी। फिर भी छोटे कृष्ण ने, जो कि उस समय बहुत छोटे थे, दांत भी नहीं आए थे, बस जन्म ही हुआ था थोड़े दिन पहले, ऐसे श्री कृष्ण ने पूतना का स्तनपान करके प्राण भी खींच लिया। और जब ब्रजवासी बाहर गए देखने के लिए कि क्या हुआ है, कृष्ण कहाँ चले गए, तो उन्होंने पूतना के लंबे राक्षसी शरीर को देखा। और वहां पर वो देख कि श्री कृष्ण अपने बाल रूप में बड़े आनंद से रमण कर रहे हैं पूतना के शरीर के ऊपर, मानो कि कुछ हुआ ही नहीं है। माने कि उनको समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, पूतना का वध हुआ, क्या हुआ नहीं। तो क्योंकि श्री कृष्ण अभी बाल रूप में थे, तो बालक की तरह, शिशु की तरह ही व्यवहार कर रहे थे। वो उस भाव में थे और भाव विभोर होकर उनको प्राय पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है, ये कौन है, ये महिला क्यों ऐसे आई है। परंतु उनके अंदर जो विष्णु थे वो सब जान रहे थे, हाँ अभी इसको खत्म करना है, पृथ्वी का भार कम करना है। तो विष्णु ने, कृष्ण के अंदर जो विष्णु है, उन्होंने वास्तव में पूतना का वध किया। तो इस प्रकार से कविराज गोस्वामी बतलाते हैं कि कैसे कृष्ण इनकी हत्या करते हैं और नहीं भी करते हैं। फिर आगे कहते हैं, अनुसंग कर्म ए असुर मारण जेई लागी अवतार कही से मूल कारण। अनुसंग कर्म ए असुर मारण, अनुसंग कर्म मतलब ये मुख्य कार्य नहीं है भगवान के अवतार लेने का, असुरों का वध करना, ये गौण कार्य है, मुख्य कार्य नहीं है, मुख्य कार्य कुछ और है। तो क्या है वो मुख्य कार्य? जय लागे अवतार कोई से मूल कारण। और अब मैं बताने जाऊंगा कि मूल कारण या मुख्य कारण श्री कृष्ण के अवतार होने का क्या है। जो असुरों का वध करना वो अनुसंग कर्म है, अर्थात मुख्य कार्य नहीं है। फिर आगे बताते हैं कविराज गोस्वामी, प्रेम रस निर्यास कोरिते आस्वादन राग मार्ग भक्ति लोके कोरिते प्रचारण। प्रेम रस निर्यास कोरिते आस्वादन, प्रेम रस का जो सार है, प्रेम रस से किस प्रकार का प्रेम है? वृंदावन का प्रेम, इस दुनिया का प्रेम नहीं, भौतिक सृष्टि का प्रेम नहीं, गोलोक वृंदावन के दिव्य प्रेम के रस के सार का आस्वादन करना चाहते थे। और केवल आस्वादन नहीं, राग मार्ग भक्ति लोके कोरिते प्रचारण, और ऐसे राग मार्ग की जो भक्ति है समस्त लोगों के बीच में प्रचार करना चाहते थे, उसको फैलाना चाहते थे, लोगों को समझाना चाहते थे अपने उदाहरण से कि सच्चा प्रेम रस क्या है, और मैं इसका आस्वादन कर रहा हूँ और आप लोग भी आस्वादन करो। आप लोग ये जो कड़वा संसार के भोग का रस है उसका आस्वादन कर रहे हो ना, और इसी को सच्चा सुख समझ रहे हो, परंतु ये सच्चा सुख नहीं है, तो आओ अब सच्चे रस का आस्वादन करो, जान लो कि सच्चा आनंद क्या है, सच्चा प्रेम क्या है। तो खुद भी आस्वादन करना चाहते हैं और अन्यों को आस्वादन कराना चाहते हैं। तो ये है श्री कृष्ण के अवतीर्ण होने का मुख्य कारण। रसिक शेखर कृष्ण परम करुण ए दुई हेतु होते इच्छार उद्गम। रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, तो श्री कृष्ण के कई नाम हैं। एक है रसिक शेखर। रसिक मतलब कौन? जो रस का आस्वादन करता है उसे रसिक कहते हैं। किस प्रकार के रस का? दिव्य रसों का आस्वादन जो करते हैं ऐसे व्यक्ति को रसिक कहते हैं। कितने प्रकार के रस हैं? इस दुनिया में 9 प्रकार के रस कहते हैं, हास्य, अद्भुत, बीभत्स आदि बहुत सारे रस हैं। और आपस में लोग इन रसों का आस्वादन करते हैं, नवरस कहते हैं। इसमें कई प्रसिद्ध नाटक आदि भी हुए हैं, नाटी लीला भी हुए हैं, और प्रसिद्ध कवियों ने आदि ऐसे कई कवि आदि भी लिखे हैं, कालिदास इत्यादि। तो दुनिया में पाए जाते हैं जो 5 प्रमुख रस हैं, साथ साथ में और भी रस होते हैं जो इन रसों का स्वाद बढ़ाते हैं। जैसे 2 मित्रों के बीच में तरह तरह के आनंद हो सकते हैं। एक है हास्य, कभी कभी वो हास्य का आनंद लेते हैं, उपहास करते हैं आपस में, और उनको मित्रता में आनंद आता है। मूल रस है मित्रत्व, मैत्री। तो ऐसे मैत्री का स्वाद बढ़ाने के लिए कभी कभी उपहास होता है, कभी कभी दोनों और भी कोई कार्य कर लेते हैं, कभी कभी वो सोचते हैं कि चलो हम एक गाड़ी में बैठते हैं, बड़े तेजी से जाते हैं मोटरसाइकिल पे बैठ के, तो दोनों उस तरह के आनंद का स्वाद लेते हैं। उनको लगता है कि ये आनंद बहुत अच्छा है, आपस में लेना चाहते हैं एक संग में आके। तो उसी प्रकार से दिव्य रस भी हैं, बल्कि वो जो दिव्य रस हैं वो मूल रस हैं, वो मूल आनंद है। ये दुनिया में जो भी रस और तथाकथित आनंद पाया जाता है वो उन दिव्य रसों का, दिव्य आनंद का विकृत प्रतिबिंब मात्र है। ये सच्चे रस नहीं है, ये रस बहुत जल्दी कड़वे हो जाते हैं। कोई भी प्रकार का रस आप लीजिए, मौसम्बी का रस लीजिए, यदि आप उसको तुरंत नहीं पिएंगे तो शीघ्र ही कड़वा हो जाता है। तो दुनिया के रस ऐसे ही है, परंतु दिव्य रस ऐसे नहीं होते हैं, वो तो और भी मीठे 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 होते जाते हैं। तो दिव्य रस का आस्वादन करते हैं भगवान और उनके भक्त गोलोक वृंदावन में। तो ऐसे रस के आस्वादन करने में से वो सर्वश्रेष्ठ हैं, रसिकों में से वो श्रेष्ठ है, रसिक शेखर। इसलिए श्री कृष्ण का नाम है रसिक शेखर। तो केवल अपने आप वो रस का आस्वादन नहीं करना चाहते, साथ साथ अन्यों को भी करवाना चाहते हैं, इसलिए उनका और एक नाम है परम करुणा। वो करुणा करते हैं अन्यों के ऊपर। और भगवान की करुणा क्या है? सबसे ऊंचे रस का आस्वादन कराना, ये दिव्य प्रेम का। वो चाहते हैं कि हम भी ऐसे प्रेम का आस्वादन करें। और यही दुई हेतु होते इच्छा उद्गम। तो इन ये दो कारण हैं जिससे कि भगवान श्री कृष्ण के मन में अवतीर्ण होने की इच्छा जागृत हुई कि चलो मुझे भी पृथ्वी लोक में जाना चाहिए और वहां जाके मैं मेरे गोलोक वृंदावन की लीला प्रकट कराऊंगा और सबका हृदय मैं आकर्षित करूंगा और सबको श्री ये दिव्य रसों के कृष्ण प्रेम के सागर में मैं डुबा दूंगा और विशेष करके जो बेलगाम के भक्त हैं उनके लिए मैं आऊंगा और राधा गोकुल आनंद के रूप में हम दोनों रहेंगे ताकि सभी आए उत्सव के समय समय पर ठीक समय पर आए, तो इसके लिए मैं अवतीर्ण होऊंगा। फिर आगे कविराज गोस्वामी बताते हैं अब कृष्ण सोच रहे हैं, कृष्ण क्या सोच रहे हैं कविराज गोस्वामी अपने शब्दों में बता रहे हैं। ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रित ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नहि मोर प्रीत। ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रित, सारे जगत में जो भी मेरी उपासना करते हैं उनकी उपासना में उनकी सेवा में उनकी भक्ति में एक मिश्रण है। वो क्या मिश्रण है? ऐश्वर्य ज्ञान का। ऐश्वर्य ज्ञान मतलब क्या? भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान होते हुए भगवान की सेवा करना। तो ऐश्वर्य ज्ञान युक्त जो भक्ति है वो कैसी है? जैसे कोई भगवान की सेवा करते करते मानता है आप प्रभु हैं, आप भगवान हैं, सर्वशक्तिमान भगवान हैं, तो बड़े ऐसे भाव से उसमें डर भी होता है और ये भी भाव होता है कि ज्यादा हम निकट नहीं जा सकते, भगवान के प्रति अपराध होगा, भगवान बहुत बड़े हैं, सबसे बड़े व्यक्ति हैं भगवान, बहुत शक्तिशाली हैं, अनंत गुणों से संपन्न हैं और ऐसे भगवान हमारे स्वामी हैं, हमारे प्रभु हैं, हम तो केवल उनके तुच्छ दास हैं, तो ये भी सेवा है, ये भी भक्ति है। परंतु ये ऐश्वर्य ज्ञान युक्त या ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित भक्ति है। तो श्री कृष्ण क्या सोच रहे हैं? ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नहीं मोर प्रीत, परंतु ऐसे भक्ति जो कि ऐश्वर्य ज्ञान से युक्त है वो प्रेम को शिथिल बना देती है। शिथिल अर्थात क्या है? शिथिल कमजोर, उसको कमजोर बना देती है उस प्रेम को। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब ऐसे भाव से लोग मेरी भक्ति करते हैं कि ये मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूं, दूर से बड़े भय से उनकी सेवा करना, तो भगवान कहते हैं कि ऐसे प्रेम में उतना मजा नहीं आता। ठीक है वो तो मेरे शुद्ध भक्त भी हैं, सेवा कर भी रहे हैं, परंतु उनका जो प्रेम है वो थोड़ा कमजोर हो गया है ऐसे ऐश्वर्य ज्ञान के कारण। फिर आगे क्या सोचते हैं श्री कृष्ण?
हमारे ईश्वर माने अपना के हीन, तारा प्रेम वश आमा ना होई अधीन।
हमारे ईश्वर माने अपना के हीन, कि मुझे ईश्वर मान के अपने आप को हीन जो व्यक्ति मानता है, जो इस प्रकार की ऐश्वर्य ज्ञान युक्त भक्ति मेरी करता है, तार प्रेम वश आमी न होई अधीन, तो ऐसे व्यक्ति के प्रेम में मैं वशीभूत नहीं होता हूँ, उसके वश में नहीं आता, नहीं उसके मैं अधीन हो जाता हूँ, हालांकि वो भी मेरा शुद्ध भक्त है, परंतु मैं उसके अधीन नहीं होता, मैं उसके वश में नहीं आता, उसके नियंत्रण में नहीं आता मैं, तो क्या कहना चाहते हैं भगवान, फिर हमें अपने आप को क्या मानना चाहिए, प्रभु मानना चाहिए कि क्या मानना चाहिए? भगवान बोल रहे हैं जो अपने आप को दास मानते हैं मुझे प्रभु मानते हैं, ऐसे प्रेम से मैं उतना संतुष्ट नहीं होता। नहीं, ये सच्चे प्रेम की शुरुआत है, क्योंकि ज्ञान होना चाहिए पहले। उस ज्ञान के आधार पर जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। परंतु भगवान अब वर्णन करने जाएंगे कि किस प्रकार का प्रेम है जिसके वश में वो आकर ऐसे भक्त के अधीन हो जाते हैं, अपने आप को ऐसे भक्त के हवाले कर देते हैं, अपने आप को बेच डालते हैं ऐसे भक्त के प्रति। परंतु अभी तक वो ऐसे प्रेम का वर्णन कर चुके हैं जो ऐश्वर्य ज्ञान युक्त है। अब एक साधारण बात कहते हैं वो, आमा के तो जे जे भक्त भज जे भावे तारे से भावे भजी ए मोर स्वभावे। आमा के तो जे जे भक्त भज जे भावे, जो अलग अलग भाग मुझे जो अपने अपने भाव में भजन करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, तारे से भावे भोजी ए मोरे स्वभावे, मैं भी उसी प्रकार से आदान प्रदान करता हूं उनके साथ। जो जिस भाव में मेरी सेवा करना चाहता है, मुझसे प्रेम करना चाहता है, उस भाव में मैं भी उसके साथ बर्ताव करता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। फिर कविराज गोस्वामी कहते हैं कि श्री कृष्ण ये सोच रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सथैव भजाम्यहम्, मतलब जैसे हम भगवान की ओर जाते हैं भगवान हमारी ओर देखते हैं। यदि हम भगवान को इस प्रकार से प्रेम करना चाहते हैं तो भगवान उस भाव को स्वीकार करते हैं। यदि हम भगवान के अस्तित्व को ही ठुकराना चाहते हैं, हम कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, हम नास्तिक होना चाहते हैं, तो भगवान उस प्रकार से हमसे बर्ताव करते हैं। फिर वो तो केवल आते हैं उस व्यक्ति के सामने, लेकिन मृत्यु के रूप में। तो हरेक व्यक्ति के साथ भगवान बर्ताव करते हैं, परंतु जैसे सामने वाले का भाव है वैसे भगवान भी सामने आते हैं। फिर आगे अब वो वर्णन करने वाले हैं उस प्रेम का जिसके भी वो वशीभूत हो जाते हैं। मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति ए भावे जे मोरे कौरे शुद्ध भक्ति। मोर पुत्र, मुझे पुत्र मानते हैं जो, मोर सखा मुझे जो उनका सखा मानते हैं जो भक्त, मोर प्राणपति मुझे जो अपने आप को प्राणपति मानते हैं, ए भावे जे मोरे कौरे शुद्ध भक्ति, तो इस भाव में जो मेरी शुद्ध भक्ति करते हैं उनके बारे में क्या? अपना के बड़ माने अमर समहीन से भावे हुई आमी ताहर अधीन। अभी सूत्र दे रहे हैं, फॉर्मूला दे रहे हैं श्री कृष्ण कि क्या करने से वो हमारे अधीन हो जाएंगे। अपना के बड़ माने अमर समहीन, अपने आप को बड़ा मानते हैं कृष्ण कह रहे हैं, और मुझे क्या मानते हैं? समहीन, समान मानते हैं, या तो मुझसे हीन मानते हैं, उनसे अपने आप मुझे हीन मानते हैं उनसे। सही भावे होई आमी ताहर अधीना, ऐसे भाव जब भक्त धारण करता है तब मैं उस भक्त के अधीन हो जाता हूं। जब भक्त अपने आप को मुझसे समान या श्रेष्ठ मानता है तब मैं उसको सच्चा शुद्ध भक्त मानता हूं और उसके अधीन हो जाता हूं। लेकिन ये कोई कृत्रिम बात नहीं है, हमें नहीं सोचना चाहिए कि चलो आज हमने क्लास में सुना झूलन यात्रा में कि हमें भगवान को हमसे हीन समझना चाहिए, भगवान को अपने आप से समान समझना चाहिए, तो फिर उनकी सेवा क्यों करेंगे, उनको हमारी सेवा करनी चाहिए। तो भगवान मुझे रसगुल्ला दिलाओ, भगवान मुझे ये चाहिए, अब मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं ना तो मुझे ये करो, नहीं ये ऐसा नहीं है। इस प्रकार का श्रेष्ठ समझना इस अवस्था में नहीं। इस अवस्था में हम तो जान ही रहे हैं धीरे 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 से कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये तीन गुण क्या है जिनके चंगुल में मैं फंस गया हूं, ये सृष्टि क्या है, भगवान कौन है, भगवत तत्व, नाम तत्व, लीला तत्व, ये सारे तत्व हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो हम कृत्रिम रूप से ऐसे भाव को स्वीकार नहीं कर सकते, परंतु ये भाव का पालन करना, ये भाव को प्राप्त करना हमारे जीवन का उद्देश्य है, इस बात को जानना चाहिए। हम उस अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं जब हमारे अंदर ऐसे भाव निर्माण होंगे, आध्यात्मिक भाव, केवल कोई भावुकता में आकर ऐसे सोचे ये सही नहीं है। तो ये प्राकृत साहजीय कहलाता है। प्रभुपाद जी और जितने भी वैष्णव आचार्य हैं वो ऐसे प्राकृत सहजीय भाव की कड़ी निंदा करते हैं। वृंदावन में ऐसे कई लोग पाए जाते हैं जो बड़े कृत्रिम रूप से ऐसे गोपियों का, गोपों का भाव स्वीकार करना चाहते हैं। कभी कभी थोड़े लोग हैं जो गोपियों का पोशाक पहनते हैं, पुरुष होकर भी स्त्री का पोशाक पहनते हैं, सोचते हैं कि ऐसे होके फिर थोड़ा नृत्य करके हम भी गोपी बन जाएंगे, परंतु ऐसे कृत्रिम भाव से भगवान का भजन नहीं किया जाता, ऐसे नकल नहीं की जाती गोपियों की या गोपों की। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि ऐसे भाव से जो आंसू बहाते हैं, ऐसे आंसू जो हैं वो वेदों के निष्कर्षों को धुला डालते हैं। तो ये वेदों के ऊपर आधारित ये आंसू नहीं है, ये उनके मनगढ़ ढंग से उनके भावुकता पर, उनके शारीरिक भाव के ऊपर निर्भर हैं, वो आधारित हैं। जो व्यक्ति तीन गुणों के चंगुल में फंसा हुआ है वो कैसे गोपियों की तरह रो सकता है, या गोप बालकों की तरह वो बर्ताव कर सकता है? नहीं, उसके लिए हमें बहुत और प्रयास करना है, बहुत सेवा करनी है, बहुत साधन भजन करना है, बहुत और कृपा प्राप्त करनी है, तब जाकर हम इस अवस्था में आएंगे जब आंतरिक स्वरूप से हम भगवान को हमसे समान या हमसे हीन समझेंगे। ये केवल वृंदावन में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। तो इस प्रकार से देखा जाए तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि तरह तरह के भक्ति होते हैं भगवान कृष्ण के। एक को कहते हैं मिश्र भक्ति। मिश्र भक्ति अर्थात हमारे भगवान के प्रेम में हमारे स्वार्थ का मिश्रण है। भगवान की भक्ति तो करते हैं, साथ साथ हमारी इच्छाएं भी हैं जिनकी पूर्ति हम करना चाहते हैं, थोड़ी भक्ति थोड़ा स्वार्थ, तो ये है मिश्र भक्ति। तो ऐसे भक्ति से भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते। दूसरे प्रकार की भक्ति है विद्धि भक्ति। ऐसे विद्धि भक्ति के अंदर भगवान भी शुद्ध रूप से, भक्त भी शुद्ध रूप से भगवान की सेवा करता है, परंतु उसकी भक्ति की जो प्रेरणा है वो है शास्त्रों की विधि। शास्त्रों में ऐसे बताया गया है इसलिए मैं करूंगा। हाँ, तो ये भी शुद्ध भक्ति है, परंतु जैसे कविराज गोस्वामी पहले कह चुके हैं, ऐसे प्रेम शिथिल होता है, कमजोर होता है, इसलिए भगवान को वश में नहीं कर पाता। परंतु जो वृंदावन के भाव की शुद्ध भक्ति है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि ऐसे भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण भक्त के हाथ में एक कठपुतली बन जाते हैं, वो भक्त की संपत्ति हो जाते हैं, भक्त भगवान के मालिक बन जाते हैं, ऐसे शुद्ध वृंदावन के भाव के प्रेम के कारण। फिर कविराज गोस्वामी बतलाते हैं वो श्लोक जो कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा था, जबकि श्री कृष्ण द्वारका से आए थे कुरुक्षेत्र सूर्य ग्रहण के समय और ब्रजवासी भी आए थे, तो उस समय श्री कृष्ण ने कहा था,
मई भक्तिर् भूतानां अमृतत्वाय कल्पते दिष्ट्या यदासी मत्स्नेहो भवती नाम मदापनः।
जो भक्ति इस भौतिक सृष्टि के जीव मेरे प्रति करते हैं उससे उनका शाश्वत जीवन पुनः जागृत हो जाता है। मई भक्तिर् भूतानां अमृतत्वाय कल्पते, अमृतत्व मतलब शाश्वत जीवन, मृत अवस्था से परे अमृत अवस्था को प्राप्त करना। तो कल्पते ये संभव होता है, प्राप्त होता है कैसे, मई भक्तिर् भूतानां, भूतानां अर्थात सारे प्राणी। जब सारे प्राणी मेरी भक्ति करते हैं तो वो अमृतत्व को प्राप्त हो जाते हैं। दिष्ट्या यद आसी मत स्नेहो भवती नाम मदापनः।
तो ऐसे जो प्रेम है हे गोपियां, जो तुम लोग मेरे प्रति करते हो वो एकमात्र रास्ता है जिससे कि तुम मेरी कृपा मेरे प्रसाद को प्राप्त कर सकते हो। तो तुम्हारा जो स्नेह है मेरे प्रति, तुम ब्रजवासियों का वो स्नेह जो है वो आदर्श है सारे सृष्टि के लिए। और ऐसे स्नेह से, ऐसे प्रेम से मुझे खरीदा जा सकता है। फिर आगे कविराज गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण सोच रहे हैं। कृष्ण क्या सोच रहे हैं, माता मोरे पुत्र भावे कौरे न बंधन अति ही न ज्ञाने कौरे लालन पालन।
आप समझ रहे हैं ना श्लोक, बड़ा सरल है, बंगला है लेकिन हिंदी की तरह है ना।
माता मोरे पुत्र भावे कौरे न बंधन,
माता अर्थात यशोदा, वो कह रहे हैं माता मोरे पुत्र भावे कौरे न बंधन, माता मुझे बांध लेती हैं किस भाव से कि मैं उनका पुत्र हूं।
माता यशोदा ने श्री कृष्ण को बांधा था ना, उखल से बांधा था, जब श्री कृष्ण ने कोई शरारत की थी उन्होंने सारे दही दूध आदि के मटके जो थे वो तोड़ दिए थे। उस समय वो बहुत छोटे थे, मां की गोद में थे, जब मां चूल्हे के ऊपर से दूध का बर्तन निकालने के लिए गई तो कृष्ण क्रोधित हो गए और देखा कि मां मुझे छोड़ के कैसे चली गई, मेरी भूख मिटी नहीं है, दूध पान समाप्त हुआ नहीं, तो अब कैसे, वो तुरंत उठ के चली गई। तो श्री कृष्ण जितने भी मटके थे वो सारे तोड़ दिए और फिर सोचने लगे कि अब गड़बड़ हो गया, अरे मैंने क्या कर दिया, अभी डांट पड़ने वाली है, अभी दंड मिलने वाला है। तो श्री कृष्ण जल्दी से वहां से भाग के निकल गए। कौन भागे वहां से, भगवान, जिनके भय में सारे ब्रह्मांड चल रहे हैं, वो अपने माता के डांट से भाग गए। तो ये क्यों संभव था, क्योंकि माता यशोदा श्री कृष्ण को अपना पुत्र मान रही थी। क्या वास्तव में श्री कृष्ण माता यशोदा के पुत्र हैं? श्री कृष्ण तो भगवान है, वही तो सभी के पिता है, वही तो सभी के सब कुछ है। परंतु ये है वृंदावन का भाव, माता यशोदा का स्नेह इतना अधिक था कि वो श्री कृष्ण को भगवान नहीं मान रही थी, श्री कृष्ण को अपना पुत्र मान रही थी। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं, माता मोरे पुत्र भावे कौरे न बंधन अतिहीन ज्ञाने कौरे लालन पालन। अतिहीन ज्ञाने अर्थात इस ज्ञान से या इस समझ से कि मैं अतिहीन हूं, मैं बहुत नाजुक हूं, बहुत कमजोर हूं, कौरे लालन पालन, इसीलिए मेरे लालन पालन करती है कि मैंने दूध नहीं पिलाया तो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, कुछ हानि हो जाएगी, मैं इसका रक्षण नहीं करूंगी तो क्या होगा, कोई भूत आएंगे, कुछ क्या होगा, तो ये माता यशोदा का भाव है और सोचती है कि मैं बिल्कुल निस्सहाय हूँ, अतिहीन, मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो मेरा देखभाल कर रही है, ये सोच के कि मैं अपना देखभाल नहीं कर सकता। कृष्ण वो है जो सभी का देखभाल कर रहे हैं, सभी का भरण पोषण वो कर रहे हैं, परंतु जब वो ऐसे बाल लीला करते हैं तो माता यशोदा सोचती है कि मेरे बिना श्री कृष्ण का क्या होगा। तो ऐसा भाव जो है श्री कृष्ण को बहुत पसंद है। फिर आगे क्या कहते हैं, सखा शुद्ध सख्य करे स्कंधे आरोहण, तुम्हें कौन बड़ो लोक तुम्हें आमी सम। सखा शुद्ध सख्य करे स्कंधे आरोहण, मेरे जो सखा हैं शुद्ध सख्य मतलब शुद्ध मैत्री के भाव में मेरे स्कंधे आरोहण मतलब कंधे पर चढ़ जाते हैं। कृष्ण भगवान हैं, तो यदि उनके जो सखा हैं वो कृष्ण को भगवान मानते तो क्या कृष्ण के कंधे पे चढ़ जाते, क्या ये संभव है? आपने कभी सुना है कि नरसिंह देव के कंधे पे कोई चढ़े, क्या ये संभव है? परंतु श्री कृष्ण के कंधों पर ग्वाल बाल चढ़े और क्या कहते थे ग्वाल बाल, तुम्ही कौन बड़ो लोग तुम्ही आमी सम, अरे तुम कौन से बड़े आदमी हो, तुम और मैं एक जैसे हैं, देखो मेरे अंदर कितनी ताकत है, अरे कृष्ण देखो मैं ब्राह्मण हूँ, मधुमंगल कहते हैं, और केवल मेरे आशीर्वाद से तुम बच गए, नहीं तो उस दिन तो बहुत कुछ होना था, वो बड़ा असुर आया, बकासुर आसुर ये सब आसुर, तो हम ब्राह्मणों की सेवा करना देखो। और दूसरे भी ऐसे ही कहते थे कि ठीक है कृष्ण तुम भी बहुत हो, ठीक है मानते हैं तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन हम कोई कम है क्या, आओ कुश्ती करो, साबित करते हैं कौन वास्तव में ज्यादा शक्तिशाली है। तो कृष्ण को इस प्रकार से अपने समान समझते हैं। माता यशोदा नंद महाराज जो वरिष्ठ गोप गोपियां हैं वो कृष्ण को अपने से निम्न श्रेणी में समझते हैं कि कृष्ण हमारे ऊपर निर्भर है। और सखा वो भगवान को अपने समान समझते हैं और इस प्रकार से भगवान से बर्ताव करते हैं। और फिर कविराज गोस्वामी कहते हैं, प्रिया जोदी मान कोरी करे भर्त्सन, वेद स्तुति होते हरे से मोर मन। प्रिया जोदी मान कोरी करे भर्त्सन, और जो ये गोपियां हैं यदि थोड़ी मान भाव में, मान भाव अर्थात गुस्सा होकर यदि मुझे डांटती हैं, तो ऐसे डांट जो है मुझे वेद स्थिति होते हरे से मोर मन। वेद स्तुति जब देवतागण आते हैं क्षीर सागर के तट पे और पुरुष सूक्त आदि प्रार्थना गाते हैं, वेदों की स्तुति का उच्चारण करते हैं, तो ठीक है मैं सुन लेता हूँ, प्रसन्न होता हूँ, परंतु इतना प्रसन्न नहीं होता, इतना मेरा मन उस समय हरण नहीं होता जितना कि होता है जबकि ये गोपियां मुझे क्रोधित होकर डांटती हैं। ऐ लेट आए, देखो 7:30 बजे आने वाले थे 7:45 बज गए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसे डांट मुझे बहुत मधुर लगता है। नरसिंह देव को डांट सकते हैं, परंतु वृंदावन में गोपियां कृष्ण को कभी कभी डांट लेती है और ऐसे डांट भगवान को बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं ऐसे डांट सुनकर। ए शुद्ध भक्त लोनो कोरी मु अवतार, कोरी बो विविध विध अद्भुत विहार। ए शुद्ध भक्त लोना करिमु अवतार, तो ऐसे शुद्ध भक्तों को लेकर मैं अवतीर्ण होने वाला हूँ, ये कहाँ सोच रहे हैं श्री कृष्ण? वहाँ गोलोक वृंदावन में अवतार लेने के पहले सोच रहे हैं कि ऐसे मेरे शुद्ध भक्तों को साथ में लेकर मैं अवतीर्ण होने वाला हूँ, कोरिबो विविध विध अद्भुत विहार, विविध विध ऐसे तरह तरह के अद्भुत लीलाओं का प्रदर्शन करूंगा और ऐसे विहार करूंगा और ऐसे आनंद लूंगा मैं। वैकुंठाद्य नहीं जे जे लीला र प्रचार, शेष लीला कोरिबो जाते मोर चमत्कार। तो ये जो लीलाओं की बात मैं कर रहा हूँ, करीबो विविध विध अद्भुत विहार, ये मेरे जो विहार है, लीला है, ये किस प्रकार के होंगे? वैकुंठ आदि नाही जे जे लीला प्रचार, ऐसी लीलाओं को मैं करूंगा जिनमें वैकुंठ में भी कोई सोच नहीं सकता। वैकुंठ में ऐसी लीलाओं को कभी दिखाई नहीं पड़ जाता, नहीं वैकुंठ के निवासी ऐसी लीलाओं के बारे में सोच भी सकते हैं। ऐसे लीलाओं को मैं करूंगा, शेष लीला कोरिबो जाते मोर चमत्कार, और ऐसे लीलाओं करूंगा कि वैकुंठ के निवासियों की बात तो दूर है, मैं मुझे भी चमत्कार हो जाएगा, मैं भी विस्मित हो जाऊंगा। ऐसे लीलाओं को मैं स्वयं आके करूंगा। तो यह है गोलोक वृंदावन की लीलाएं। हालांकि समस्त जो आध्यात्मिक जगत है वो वैकुंठ कहलाता है, फिर भी इस वैकुंठ लोक में अनगिनत वैकुंठ लोक हैं, जिनमें से प्रमुख है कृष्ण लोक। ये समझिए कि वैकुंठ लोक की राजधानी है। तो ये कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन से श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि वहां की जो लीलाएं हैं गोलोक वृंदावन की, उन्हीं को मैं यहां भौतिक सृष्टि में ले आऊंगा और यहां भारत भूमि में वृंदावन को प्रकट करा के उन्हीं गोलोक वृंदावन की लीलाओं को मैं प्रदर्शित करूंगा। ऐसी लीलाएं जिनसे मैं भी विस्मित हो जाऊंगा। मो विषय गोपी गणेर उपपति भावे, योग माया कोरी बेक आपन प्रभावे। योग माया कोरी बेक आपन प्रभावे, तो योग माया के प्रभाव से जो गोपियां हैं वो अपने आप को क्या समझेंगी? मेरे प्रेमी समझेंगी, प्रेमिका समझेंगी, सोचेंगे कि मैं उनका प्रेमी हूँ, मैं उनका पति हूँ। ऐसे गोपियां सोचेंगी मेरी योग माया के प्रभाव में आकर। तो ये संसार का जो इस प्रकार का भाव है, ये तो महामाया के अंदर आता है। इसलिए गोपियों का जो भाव कृष्ण के प्रति है, उसकी तुलना इस संसार के संबंधों से बिल्कुल नहीं कर सकते। बल्कि जिस व्यक्ति के हृदय में काम वासना है, वो भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं गोपियों के साथ में, उनको बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। एक है लोहा, दूसरा है सोना, दोनों में कोई तुलना ही नहीं है।
आमी न जानीता न जाने गोपी गण, दुहार रूप गुण दुहार नित्य हरे मन।
परंतु न गोपी गोपियां न मैं इस बात को जान पाएंगे कि हम सब योग माया के प्रभाव में हैं, क्योंकि हमारे जो मन है एक दूसरे के प्रति इतने आकर्षित हो जाएंगे कि और किसी बात को हम जानेंगे ही नहीं।
ए सब रस निर्यास करिबो आस्वाद, ए द्वारे करिबो सब भक्तिर प्रसाद।
यही सब रस निर्यास कोरिबो आस्वाद, इस प्रकार से मैं इन सारे रसों का आस्वादन करूंगा। यही द्वारे कोरिबो सब भक्तेर प्रसाद, और इस प्रकार से मैं सारे भक्तों के ऊपर कृपा करूंगा।
ब्रजर निर्मल राग सुनी भक्त गण, राग मार्गे भजे जेनो छाड़ी धर्म कर्म।
व्रजेर निर्मल राग सुनी भक्तगण, व्रजेर मतलब व्रज के, वृंदावन के निर्मल राग,
यहाँ राग का अर्थ गुस्सा नहीं है, मराठी में राग को गुस्सा कहते हैं, है ना, गुस्से को राग कहते हैं, लेकिन राग मतलब आसक्ति, तीव्र आसक्ति। तो वृंदावन की जो भक्ति है उसको राग भक्ति कहते हैं, क्योंकि इस भक्ति में इतनी तीव्र आसक्ति है कि ऐसे आसक्ति कहीं और नहीं पाई जाती है, वैकुंठ में भी नहीं। तो ऐसे राग भक्ति बिल्कुल निर्मल है, इसलिए गोपियां जब श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं तो ऐसा प्रेम निर्मल है, संसार का कोई भी इसमें काम नहीं है। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण सोच रहे हैं, व्रजेर निर्मल राग सुनी, जब ऐसे निर्मल राग भक्ति जो कि वृंदावन की भक्ति है, जब ये संसार के भक्त ऐसे भक्ति के बारे में सुनेंगे तो क्या करेंगे, राग मार्ग भजे जनो छाड़ी धर्म कर्म, तो मुझे भी ऐसे राग मार्ग में भजन करने की लालसा मन में रखेंगे, ऐसी अभिलाषा अपने मन में रखेंगे, और फिर छाड़ी धर्म कर्म, ये जो कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, ये सब भूल जाएंगे, ये मुहूर्त, ये सब चीजें सब भूल जाएंगे। नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, कर्म कांड ज्ञान कांड ये सब विषय भांड, ऐसे राग मार्ग में जो भक्ति करता है उसे लगता है ये ज्ञान कांड कर्म कांड ये सब जो है ये सब बड़े विष के पात्र है, और इससे ये भांड कैसे है, जिसे भांडन उत्पन्न होता है केवल, यहाँ भांडन कहते हैं ना झगड़े को, केवल भांडन की दुनिया में हम रहेंगे, परंतु भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि राग वृंदावन के भक्ति के बारे में सुनकर लोग ये सारे संसार के धार्मिकता को भूल जाएंगे, केवल मेरे पीछे आएंगे, केवल उस प्रेम को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे जो कि मेरे प्रिय ब्रजवासी भक्तों ने की थी। तो इसलिए भगवान यहाँ पर आते हैं और ऐसी सुंदर लीलाएं प्रदर्शित करते हैं। और फिर भगवान एक प्रसिद्ध श्लोक कहते हैं, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितः भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। अनुग्रहाय भक्तानां, मेरे भक्तों के ऊपर अनुग्रह अर्थात कृपा देने के लिए, मानुषम देहम आश्रितः, मैं मनुष्य समाज में प्रकट होता हूँ, श्री कृष्ण कहते हैं, भजते तादृशी ही क्रीड़ा यह श्रुत्वा तत्परो भवेत। तो भजते तादृशी क्रीड़ा यह श्रुत्वा, जब ऐसे सुंदर लीलाओं के बारे में, विशेष करके वृंदावन लीलाओं के बारे में जब मेरे भक्त श्रवण करते हैं, तत्परो भवेत, फिर अवश्य वो मेरी भक्ति में लग जाते हैं। बल्कि कविराज गोस्वामी कहते हैं, भवेत विधिलिंग है, मतलब कर होना चाहिए, करना चाहिए। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब मेरी वृंदावन लीलाओं का श्रवण कोई भक्त करता है तो उसे भी मेरी सेवा इस प्रकार से करनी चाहिए। भवेत शब्द का तात्पर्य ये है, इसका भाव ये है। तो इस प्रकार से हमें भी भगवान के सुंदर वृंदावन लीलाओं को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए उनके बारे में। तो भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में ऐसे झूले पर बैठते हैं, कभी कभी अपने ग्वाल बालों के साथ में झूले में झूलते हैं, कभी कभी वो श्रीमती राधा रानी के साथ झूले पे बैठते हैं और रमण करते हैं, दिव्य आनंद लेते हैं। तो झूलन यात्रा के महोत्सव में वृंदावन में ये उत्सव मनाया जाता है कि राधा रानी और श्री कृष्ण को झूले पे बिठाया जाता है और दोनों झूलते हैं अच्छी तरह से। दोनों को बड़ा आनंद आता है और भक्त लोग झुलाते हुए बड़े आनंद लेते हैं कि राधा कृष्ण कितने प्रसन्न हैं, कितना आनंद ले रहे हैं। तो राधा कृष्ण को आनंद दे के हमें भी आनंद मिलेगा, उनको आनंद दे के हमारे दुख हम भूल जाएंगे। तो राधा कृष्ण को तो हम झुला रहे हैं, साथ साथ प्रार्थना कर सकते हैं कि हे श्री श्री राधा कृष्ण, हे श्री श्री राधा गोकुलानंद, श्री श्री राधा माधव, आप तो झूल रहे हैं लेकिन इस भव रोग के झूले से, इस संसार के झूले से हमें जरा बचाइए। हम भी झूल रहे हैं, कैसे झूल रहे हैं, कभी देवता के योनि में, कभी मनुष्य योनि में, फिर कभी कीड़े के योनि में, फिर से मनुष्य योनि में, फिर देव योनि में, हमारा झूला चल रहा है। अलग अलग 84 लाख योनि में हम भ्रमण कर रहे हैं, तो हमारा भी झूला चल रहा है। तो इस झूले से उठा लीजिए हमें, इसलिए हम आपको झुला रहे हैं अभी। साथ साथ और एक झूले में हम अटक पड़े हैं, वो क्या है, कभी भोग कभी त्याग, कभी भोग कभी त्याग, भोग त्याग भोग त्याग भोग त्याग, ये भी झूला चल रहा है। ना भोग में संतुष्ट हैं और भोग से जब ऊब जाते हैं तो त्याग करना चाहते हैं, लेकिन ये त्याग की भावना भी अधिक समय टिक नहीं पाती है, फिर से हम भोग में आ जाते हैं, फिर से ऊब जाते हैं, फिर त्याग में आते हैं। तो भोग त्याग भोग त्याग, क्योंकि न भोग न त्याग ये हमारी स्वरूप की अवस्था है। हमारी स्वरूप की अवस्था क्या है, भगवान की सेवा। तो ऐसे उत्सव में जब हम आते हैं, भगवान को झुलाते हैं ऐसे उत्सव में, भगवान को आनंद देते हैं, भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं, तो हमें भी लगता है कि हाँ, हमें भी इस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहिए, हमें भी ब्रजवासियों के पद चिन्हों में चलना चाहिए, नकल नहीं पद चिन्हों में चलना चाहिए, हमारे जीवन की अभिलाषा बनानी चाहिए कि हमें भी अंततः गोलोक वृंदावन में प्रवेश करना है और उसकी तैयारी अभी करनी है। तो राधा गोकुलानंद मंदिर क्या है, गोलोक वृंदावन में जाने के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र है। यहाँ पर आकर हम अभ्यास करते हैं, वही कार्य करते हैं जो कि वहां जाकर करेंगे, परंतु अभी सीख रहे हैं कैसे करना है। तो इसलिए राधा गोकुलानंद मंदिर का और श्रील प्रभुपाद के शिक्षाओं का, उपदेशों का पूरा पूरा लाभ हमें उठाना चाहिए और विशेष करके इस झूलन यात्रा के महोत्सव के पहले दिन पर हमें ये भाव का अनुशीलन अवश्य ही करना चाहिए। तो इस भाव के अनुशीलन करने में हमें सहायता करने के लिए भी हम एक भजन गाएंगे। तो जो भजन है आप कृपया लीजिएगा, ये आपके पास है यहाँ।